घमंड सात्विक कांड का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ।
सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णैमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषण दयम जीवस्य परवणम वोच्छम। जीवकांड ग्रंथ के नाम की सार्थकता दिखाते हुए आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव द्रव्य का प्ररूपण कर रहे हैं। इसमें 12वां चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, अर्थात मार्गणा प्रकरण में अब ये 12वीं प्ररूपणा है, ज्ञान मार्गणा। जानैति काल विषय
दव गुणे पज्जये बहु भेदे
पच्चकं च परोक्षम अनेन नाणं तिणं वेन्ति। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। जानैति काल विषय दव गुणे पज्जय बहुभेदे पच्चकं च परोक्षम अनेन नाणं तिणं वेन्ति। जानाति त्रिकाल विषयान् द्रव्य गुणान् पर्यायांश्च बहुभेदान् प्रत्यक्षं च परोक्षम अनेन ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति। ज्ञान मार्गणा का शुभारंभ हुआ। इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव कहते हैं कि जानैति काल विषय, जो तीनों काल के विषयक, सभी तीन काल कौन से होते हैं, भूत वर्तमान भविष्यत, इन तीनों काल संबंधी दव गुणे पज्जये या बहुभेदे, द्रव्यों को, उनके गुण को, उनके अनेक प्रकार की पर्यायों को, जो बहुत प्रकार की पर्याय हैं, उन सब को जिसके द्वारा जाना जाता है, ये जीव जिसके द्वारा जानता है उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान कहलाता है। पच्चखम च परोक्षम, और वह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेदों से समन्वित है। एक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और एक परोक्ष ज्ञान है। सामान्य से ज्ञान के दो भेद बताए, तो आपने इस माध्यम से जाना कि ज्ञान उसे कहते हैं कि जो तीनों कालों की भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल संबंधी सभी द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो ये सामान्य से ज्ञान का लक्षण हुआ। यानी छह द्रव्य कौन कौन से हैं, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, और पांच अस्थिकाएं होते हैं काल को छोड़कर, जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश, ये पांच जो हैं अस्थिकाएं कहलाते हैं। आपने द्रव्य संग्रह में जाना है कि काल को अस्थिकाय संज्ञा नहीं है, और सात तत्व हैं जीव अजीव आश्रव बंध समवर्ण निजरा और मोक्ष, और नौ पदार्थ होते हैं। सात तत्वों में पुण्य और पाप, इन दो को मिलाने से नौ पदार्थ हो जाते हैं। तो इनके गुण और पर्याय, इन द्रव्यों के गुण और पर्यायों को, यानी सारी एक अवस्थाओं को और उसके त्रैकालिक स्वरूप को जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है। क्या है, उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, हमारे संसारी आत्माओं के ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है। वरना सबकी आत्मा के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य विद्यमान है, लेकिन उस सूर्य के आगे आवरण पड़ा है, इसलिए वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाता। जितना जितना आवरण हटता है उतना उतना ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान के लिए कहा कि अवबोधार्थक ज्ञान धातु से ये ज्ञान शब्द निष्पन्न हुआ है। अवबोधार्थक माने जानने रूप, जो अवबोधन कराता है, ज्ञान कराता है, इसलिए ज्ञान धातु से ये शब्द बना है। और जीव की चैतन्य शक्ति के साकार परिणमन रूप उपयोग को ही ज्ञान कहते हैं। उपयोग दो प्रकार का होता है, साकारोपयोग अनाकारोपयोग या ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जिनमें आकार जब तक नहीं झलकता तो वह दर्शनोपयोग कहलाता है, वो अनाकारोपयोग निराकार होता है, और साकारोपयोग ज्ञानोपयोग को कहते हैं। तो साकार परिणमन रूप उपयोग को ज्ञान कहते हैं। द्रव्य के फिर बाद में बताया कि द्रव्य गुण और उनकी त्रैकालिक अवस्थाएं उस ज्ञान की विषय होती हैं, साकार उपयोग की विषय होते हैं। आप देखो जीव का लक्षण कहा, क्या कहा, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। तो साकारोपयोग अनाकारोपयोग यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये हर प्राणी चाहे एक इंद्रिय जीव है चाहे पंचेंद्रिय जीव है, सब में किसी न किसी रूप में साकार और अनाकार ज्ञान और दर्शन उपयोग पाए ही जाते हैं। तो सामान्यतया इस ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जिसमें सहायता होती है वह परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय और मन की सहायता से। और जिसमें इन इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती है, जो विशद है स्पष्ट है इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही अपने विषय को ग्रहण करता है, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इस ज्ञान के बारे में आपने इतना जान लिया है, और हम सब के पास ये ज्ञानोपयोग है, जिस रूप में भी है, उस थोड़े रूप में आंशिक रूप में है, लेकिन है सबके अंदर ये। आपने ज्ञान मार्गणा का प्रारंभिक स्वरूप जाना है, आगे इनके भेदों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे।